Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है, उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है, युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था, जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड पॉडकास्ट का ये 10वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। निकोला नाम के एक नौजवान के नेतृत्व में बच्चे इटली के लिए रवाना हुए। निकोला ने दावा किया था कि उसने ईसा मसीह को सपने में देखा है। उन्होंने उसे यरूशलम को आजाद कराने के लिए बच्चों को संगठित करने का आदेश दिया। जब ये खबर फैली तो बच्चे घरों से भागकर निकोला से जुड़ने लगे। पोप की सलाह भी बेअसर रही और बच्चों की सेना आल्प्स पर्वत श्रृंखला पार कर गई। रास्ते में भूख, बीमारी और जानवरों के हमलों से कई बच्चे मारे गए। कुछ अपने वतन लौट गए, जबकि कुछ इतालवी शहरों में ही ठहर गए। अभियान के एक अन्य चरण में बच्चे एशिया जाने के लिए 7 जहाजों पर सवार हुए। इनमें से 2 जहाज डूब गए और 5 ने मिस्र और उत्तरी अफ्रीका का रुख किया। वहां जहाज मालिकों ने इन गरीब बच्चों को दास व्यापारियों को बेच दिया। इस तरह क्रूसेड्स का 14 चरण अपने अंजाम को पहुंचा। क्रीसेंट के खिलाफ क्रूसेड, दरअसल क्रूसेड वर्सेस क्रूसेड में बदल गया। जैसा कि बताया जा चुका है, क्रॉस, ईसा मसीह, मजहब, यरूशलम जैसे पवित्र शब्द क्रूसेडर्स की भौतिक और सांसारिक जरूरतों को पूरा करने से ज्यादा कुछ नहीं थे। वो इस बहाने का इस्तेमाल पूरब में मौजूद समृद्धि और धन को हासिल करने और अपनी गरीबी और अभाव की भरपाई करने के लिए करना चाहते थे। क्रूसेड इस्लामी पूरब के धन के स्रोतों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ईसाई सामंतों, राजाओं और पादरियों द्वारा किए गए अवसरवाद के अलावा और कुछ नहीं था। एकदम स्पष्ट है कि धर्म युद्धों में भाग लेने वालों का लक्ष्य सिर्फ दूसरों के धन को लूटना और विस्तारवाद और कामों की इच्छाओं की पूर्ति करना था, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटिनोपल में ये जरूरतें पूरी हो गईं तो पूर्व की ओर कोई दीर्घकालिक अभियान नहीं चला सके। कॉन्स्टेंटिनोपल में उन्होंने जो धन अर्जित किया वो एशियाई शहरों में मौजूद नहीं था। इसी तरह बालकन में उन्होंने जो हरी भरी और उपजाऊ ज़मीनें प्राप्त की वो मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं थीं। इसलिए उन्हें अब मुस्लिम क्षेत्र के खिलाफ अभियान चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। कहा गया था कि धर्म युद्ध के 4th चरण का परिणाम पोप और यूरोप के ईसाइयों के एक और युद्ध को रोक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 4th युद्ध का परिणाम पोप और युद्ध में भाग लेने वाले क्रूसेडर्स दोनों के लिए लाभदायक था। क्रूसेडर्स ने दूसरों की संपत्ति लूटने के अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था और पोप ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्वतंत्रता को खत्म करने में सफल रहे। इसलिए पूर्व में इस्लामिक क्षेत्रों पर आक्रमण करने का एक उपयुक्त अवसर उत्पन्न हो गया था। पोप इनोसेंट तृतीय, जो सत्ता में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति थे, इस्लामिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए ईसाई जगत को एकजुट करके अपनी कमान में सीरिया और मिस्र भेजने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर युद्ध के 4th चरण में काफी मात्रा में लूटपाट करने वाले क्रूसेडर्स का लालच कम नहीं हुआ था, बल्कि लूट खसोट की उनकी इच्छा बढ़ गई थी। जो लोग किसी भी कारण से 4th चरण में भाग नहीं ले पाए थे, वो भी कुछ पूंजी बनाने के लिए एक और युद्ध का इंतजार कर रहे थे। क्रूसेड्स का पांचवां चरण इस्लामी क्षेत्रों पर मंगोल आक्रमण के साथ शुरू हुआ। चंगेज खान ने ईरान की पूर्वी सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू किया। हालांकि इस व्यापक मंगोल आक्रमण से क्रूसेडर्स को तत्काल कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन इससे मुसलमानों को खतरे का एहसास हो गया और जब मंगोल इस्लामी क्षेत्रों की पश्चिमी सीमाओं तक पहुंचे तो ये क्रूसेडर्स के पक्ष में समाप्त हुआ। दूसरी ओर मंगोल और विशेष रूप से इल्खान ईसाइयों के प्रति बहुत आशावादी और अच्छा व्यवहार करने वाले थे, ये भी स्पष्ट नहीं है कि मंगोलों को इस्लामिक क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए उकसाने में क्रूसेडर्स की कोई भूमिका थी या नहीं। लेकिन आगे चलकर ईसाई देशों और मंगोलों के बीच जो सकारात्मक संबंध बने उससे ये संभावना प्रबल हो गई। हमने पहले कहा था कि सलाहुद्दीन के मृत्यु के बाद उनका क्षेत्र उनके बेटों और भाई के बीच बट गया। सलाहुद्दीन के भाई अल आदिल सीरिया से मिस्र तक अपने क्षेत्र का विस्तार करने और सलाहुद्दीन के क्षेत्र के बड़े हिस्से को विरासत में लेने में सक्षम रहे। उन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान वे सलजूक और क्रूसेडरों के साथ सुनियोजित संबंध स्थापित करने में सफल रहे। लेकिन उनकी मौत के बाद अय्यूबी साम्राज्य उनके पुत्रों में विभाजित हो गया। इसके बाद एशिया और यूरोप के क्रूसेडरों में यरूशलम और अन्य इस्लामी भूमि पर कब्जा करने की लालसा भड़क उठी। दूसरी ओर सेल्जूक किकावस ने इस अवसर का लाभ उठाया और अनातोलिया में अलेप्पो और मेसोपोटामिया तक अपने क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया। इसलिए क्रूसेडरों के साथ एकजुट होने के लिए उन्होंने अय्यूबियों पर दो तरफ से हमला करने में रुचि दिखाई। इसके अलावा धर्म युद्धों के इस चरण की शुरुआत में, जैसा कि पहले हुआ करता था, एक और कारक पोप और ईसाई राजाओं का धर्म युद्ध शुरू करने के बहाने लोगों पर भारी कर बढ़ाने का लालच था। इस संबंध में राजाओं ने भी इस चरण में धर्म युद्धों में सहयोग करने का वादा किया ताकि अधिक कर वसूलने का बहाना मिल सके। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च पर अपना अधिकार जमाने के लिए पोप ने क्रूसेड का सहारा लिया था। इस दौरान एशिया के युद्धग्रस्त शहरों में काफी कुछ बदल गया। यरूशलम में रानी की मौत के बाद राजा ने आर्मेनिया के राजा लियो की बेटी से शादी कर ली। कुछ ही समय बाद लियो ने अंताकिया को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। इस प्रकार अपने भविष्य के लिए आकांक्षा रखने वाले इस पिता और दामाद ने यूरोप के फ्रैंकस को मुसलमानों के खिलाफ कूच करने के लिए उकसाने का प्रयास किया। आखिरकार धर्म युद्ध के एक चरण के दौरान ईसाई बच्चों पर आई त्रासदी ने लोगों को एक और धर्म युद्ध के लिए उकसाने में प्रभावी भूमिका निभाई। हजारों ईसाई बच्चों के आंदोलन ने पोप को ये विश्वास दिला दिया कि धार्मिक कट्टरता लोगों में गंभीर रूप से लोकप्रिय है और वो इस स्थिति का इस्तेमाल एक और युद्ध छेड़ने के लिए कर सकते हैं। 1215 में पोप ने रोम में एक परिषद का आयोजन किया। इस परिषद में कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स वरिष्ठ पादरियों ने भाग लिया। इस बीच जर्मन सम्राट, फ्रांस के राजा, इंग्लैंड के राजा और हंगरी के राजा उपस्थित रहे। एक भड़काऊ और उत्तेजक भाषण में पोप ने उपस्थित लोगों से यरूशलम को आज़ाद कराने के लिए एक और धर्म युद्ध शुरू करने का आह्वान किया। परिषद ने आनन फानन में क्रूसेडर सेनाओं और कार्रवाई की स्वतंत्रता, साथ ही सेना के खर्चे की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। इस परिषद से पहले पोप ने ईसाई जनता को नए धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एशियाई धार्मिक शहरों में अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे। पोप के इस राजनीतिक कदम का कारण शायद ये था कि एशिया के धार्मिक शहरों के निवासी अपनी प्रचुर भौतिक संपदा के कारण सुरक्षा और शांति के लिए अधिक उत्सुक थे, इसलिए उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया जा सकता था। बहरहाल परिषद के आयोजन के बाद चर्च के प्रवक्ता और मिशनरी पूरे यूरोप में गए और लोगों से युद्ध में भाग लेने का आह्वान किया। पेरिस के मुफ्तियों ने फतवा जारी कर दिया कि जो कोई भी क्रॉस उठाएगा और उसके बाद भी वो अपना संकल्प तोड़ेगा तो वो घोर पाप करेगा। यूरोपीय राजाओं से लेकर गरीब और जरूरतमंद लोग इस प्रोपेगेंडे में आकर एक और युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। युद्ध शुरू होने से पहले पोप इनोसेंट का निधन हो गया और पोप ऑनोरियस ने उनकी जगह ली। नए पोप ने पिछले पोप की योजनाओं का उत्साहपूर्वक पालन किया। उन्होंने आगा के राजा जॉन को सूचित किया कि मुजाहिद जल्द ही पहुंचेंगे। ऑनोरियस ने यूरोप के राजाओं को पत्र लिखा और उनमें से कई ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। रंसिमन हंगरी के राजा के बारे में लिखते हैं, उन्होंने भी पोप के पत्र के जवाब में उत्साह दिखाया, लेकिन उनकी प्रेरणा जिहाद नहीं थी। उनकी पत्नी कॉन्स्टेंटिनोपल के लैटिन सम्राट की भतीजी थी, जिनके कोई संतान नहीं थी, और हंगरी के राजा को उनकी विरासत से लगाव था। इस प्रकार धर्म योद्धाओं ने मुसलमानों के खिलाफ पांचवा युद्ध छेड़ दिया और अपने नेताओं की सत्ता की लालसा की आग में हजारों लोगों को झुलसने पर मजबूर कर दिया।